قوالی کے سامعین کی خدمت میں سپر کیسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز پیش کرنے جا رہی ہیں تسلیم عارف کا ایک اور نذرانہ، اس کا عنوان ہے خدا پر بھروسہ۔ حضرات، ایک مولوی صاحب جو تقریر میں بہت ہی ماہر تھے لیکن اس تقریر پر ان کا اپنا عمل نہیں تھا، ان کا بیٹا بھی ایک دن تقریر سننے کے لیے ان کے ساتھ گیا۔ والد صاحب نے جو کچھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ہر قیمت میں بھروسہ رکھنا چاہیے چاہے کتنی بھی پریشانی ہو، اور جب ان کا وہ بیٹا والد کی یہ تقریر سن کر اپنے گھر آتا ہے تو وہ گھر آ کر کیا کرتا ہے اور ان مولوی صاحب کا انجام کیا ہوتا ہے، بیٹے کو ایمانداری کا اصطلاح کیا ملتا ہے، اسی بات کو جناب شوق وزیر گنجوی جو اس نظم کے مصنف ہیں بڑے خوبصورت الفاظوں میں بیان کر رہے ہیں۔ فنکار تسلیم عارف ہیں اور میوزک آلوین جی کا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ خدا پر بھروسہ۔
عالم جو با عمل ہے وہی کامیاب ہے، جو بے عمل ہے آدمی خانہ خراب ہے۔
کاغذ کے پھول میں کہیں بوئے گلاب ہے، اسی لیے تو کہنا ہے
ایک مولوی کے علم و عمل کا ہے واقعہ، ایک مولوی کے علم و عمل کا ہے واقعہ، جو غور سے سنو گے تو کچھ ہاتھ آئے گا،
تھا ایک پڑھتا تھا وہ دور شہر میں،
आपका फरमान कभी भी न टालना। मौलवी साहब तकरीर के लिए गए तो बेटे को भी साथ ले गए, लेकिन क्या हुआ सुनिएगा। एक रोज मौलवी वही तकरीर को गए, बेटे को लेके साथ में एक गांव को गए। तकरीर की आवाम से ये जोश में कहा, बंदों को रोजी देता है हर हाल में खुदा, मोमिन वही है जिसका भरोसा खुदा पे है, ईमान की सलामती उसकी रजा पे है। तुमको अगर भरोसा खुदा पर है मोमिनों, एक बात फायदे की है तुम गौर से सुनो, एक वक्त की खुराक रखो सिर्फ अपने घर, बाकी लुटा दो माल सभी रब के नाम पर। सामा करो जहां में गरीबों की खुशी का, रोजी तुम्हें भी देगा वो राज़िक है सभी का। ये बात सुन के मौलवी साहब का वो पिसर घर अपने आ गया, वो वहां रह गए पितर। लड़के ने आके बस्ती में ऐलान कर दिया, हर चीज रब के नाम पे घर की लुटाऊंगा। उसने खुदा के नाम पे हर चीज बाखुशी, मिस्कीन और मोहताज गरीबों को बांट दी। माँ ने कहा के लाडले तुमने ये क्या किया, बोला के अम्मी बाप ने ऐसा ही था कहा। और ईमान की सलामती उसकी रजा पे है, ईमान की सलामती उसकी रजा पे है, ईमान की सलामती उसकी रजा पे है। नाम पर गरीबों और मिस्कीनों में खैरात कर देता है, लेकिन जब मौलवी साहब आते हैं तकरीर करके वापस अपने घर तो उनका क्या हाल होता है समाप्त कीजिएगा। खैरात के सैलाब में हर चीज बह गई, एक वक्त की खुराक फकत घर पे रह गई। घर आए अपने लौट के जिस वक्त मौलवी, बीवी ने खाना पेश किया हो गई खड़ी। पंखे से मौलवी पे हुआ उसने की मदर, पंखे से मौलवी पे मगर आया पसीना मौलवी को सुन के ये खबर। कौन सी खबर सुनाई बीबी ने अपने मियाँ को, सुनिएगा। बीबी ने कहा इस घड़ी तो आप खाइए, अब शाम के खाने के लिए कुछ मंगाइए। बोले जनाब मौलवी साहब को फिक्र क्या, जो चीज घर नहीं है उसे लीजिए मंगा। इस वक्त हम पे रहमत परवरदिगार है, बंदा ये खुश नसीब बड़ा मालदार है। बोली तुम्हारे हुक्म से फरजंद ने जनाब, जो कुछ भी घर में था वो लुटाया है बेहिसाब। जो सामने है खाना वही बस है बिल यकीन, अब इसके बाद घर में कोई चीज भी नहीं। ये बात सुन के मौलवी सत्ते में आ गए, मुंह फाड़े हुए रह गए, चक्कर में आ गए। रश खा के वो पलंग से गिरे जब जमीन पर, हैरत में आके दौड़ पड़े बीवी और पिसर।
देखा जो उनके दोनों के चेहरे उतर गए,
देखा जो उनके दोनों के चेहरे उतर गए, देखा जो उनके दोनों के चेहरे उतर गए।
देखा जो उनके दोनों के चेहरे उतर गए।
बोले आता है, हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं वो मौलवी साहब कि हमारे घर का सारा माल दौलत जा चुका है, अब एक टाइम के खाने के लिए भी नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, समाज फरमाएं।
करते थे और सबको नसीहत झिझोड़ के, खुद अपना माल रखते थे घर जोड़ जोड़ के। खैरात करो सबको ये तलकीन की, मगर खुद को जहां से ले गया खैरात का असर। रोते थे जार जार गमो रंज में सभी, बेटा वो और बीवी की हालत खराब थी। समझाया सबने बेटे को अब सब्र कीजिए, अब इनको दफन करने की कुछ बात सोचिए। बोला ये बेटा माँ से न हो बेकरार तुम, 100 रुपये कहीं से भी लाओ उधार तुम। फौरन नकाब ओढ़ के बेटे की माँ गई, एक सेठ से रकम वही बेटे को ला के दी। उसने कफन मंगा के किया दफन बाप को, फिर तीजा करके उसने कहा माँ से अब सुनो। ये 20 रुपये हैं इन्हें पास तुम रखो, चरखा चला के घर में गुजर अपनी तुम करो।
मैं जा रहा हूँ काम को परदेश के लिए,
मैं जा रहा हूँ काम को परदेश के लिए, मैं जा रहा हूँ काम को परदेश के लिए,
मैं जा रहा हूँ काम को परदेश के लिए।
करना दुआएं माँ मुझे परवरदिगार से, माँ को ये 20 रुपए देकर और खुद 50 रुपए किसी से उधार लेकर अब परदेश जाता है, मगर उसके साथ कौन कौन से हादसे पेश होंगे, समाज फरमाए।
लेकर 50 रुपये परदेश को चला, अब क्या दिखाएगी उसे तकदीर देखना। पैदल सफर किया तो लगी प्यास इस कदर, पानी की जुस्तजू में वो दौड़ा इधर उधर। आया नजर कुआं तो करार उसको आ गया, देखा कुआं जो पास से तो देखता है क्या। अंदर कुएं के 3 कुएं हैं भरे हुए, उनमें से 2 कुएं तो हैं बाहम मिले हुए। दोनों का पानी होता है रद्दो बदल, मगर है एक का रुका हुआ अपने मकाम पर। कुछ राज समझा लड़के ने पानी नहीं पिया, हिम्मत की और आगे की जानिब सफर किया। एक बाग में वो पहुंचा जब आराम के लिए, पानी से भीगे कोरे घड़े तो उसे मिले। कुछ देर बाद खोले घड़े पानी के लिए, देखा के दोनों खुश्क हैं अंदर से वो घड़े। नाचार हो के लड़का वो आगे तो चल दिया, एक गांव रास्ते में नजर उसको आ गया। जब गांव के करीब गया देखता है क्या, कब्रें हैं सरे राह और मजमा है एक बड़ा। मैयत रखी है कब्र भी तैयार है, मगर बैठे हुए खामोश हैं इस जापे सब बशर। आराम से मैं गांव में पानी भी पीऊंगा, आराम से मैं गांव में पानी भी पीऊंगा, आराम से मैं गांव में पानी भी पीऊंगा।
क्या चक्कर है तो लोग उसे क्या बताते हैं सुने।
पूछा ये गांव वालों से क्यों देर है जनाब, चेहरों पे सबके किस लिए है रंगे इस तरह। लोगों ने कहा 3 दिन मैयत को हो गए, रोका है दफन होने से एक साहूकार ने। मैयत पे उसका कर्ज है एक साहूकार का, उस कर्ज को बशर कोई करता नहीं अदा। इस वास्ते मैयत है अभी तक रुकी हुई, के कर्ज उसका कोई अदा कर दे आदमी। जब तक 50 रुपये होंगे नहीं अदा, तब तक वो दफन होने को रोकेगा बरमला। लड़के ने फिर बुला के उसी मर्द के लिए, फौरन 50 रुपये उसके अदा किए। सबने खुशी खुशी फिर उसे दफन कर दिया, लड़के ने दफन करके लिया अपना रास्ता। गांव में पानी पी के फिर आगे वो चल दिया, कुछ दूर चल के एक तिराहा उसे मिला। एक सायादार पेड़ के नीचे ठहर गया, इतने में एक और मुसाफिर उधर आ गया। वो मर्दे ज़ईफ था, चेहरे पे उसके नूर था, इंसान शरीफ था। लड़के ने उसको पहले अदब से किया सलाम, बा एहतराम उससे हुआ फिर वो हम कलाम।
हजरत कहाँ से आपकी तशरीफ आई है,
हजरत कहाँ से आपकी तशरीफ आई है, हजरत कहाँ से आपकी तशरीफ आई है,
हजरत कहाँ से आपकी तशरीफ आई है।
आगे कहाँ को जाने की सहमत उठाई है, आगे कहाँ को जाने की सहमत उठाई है, आगे कहाँ को जाने की सहमत उठाई है।
तिराहे पर उसको एक सायादार पेड़ मिलता है, वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है लड़का। इतने में एक और मुसाफिर वहां आ जाता है। अब उन दोनों की जब बातचीत होती है तो क्या होता है सुने।
बोले बुजुर्ग जाता हूं फिक्रे मुआश में, तुम ये बताओ बेटे हो किसकी तलाश में। उसने कहा कि मैं भी कहीं काम करूंगा, कुछ मालो जर कमाऊंगा और पेट भरूंगा। मंजूर हो जो आपको तो साथ ही चले, शिरकत में कोई काम चलो शहर में करें। बोले बुजुर्ग तुम हो जवां, मैं हूं ना तवा, मैं साथ काम कर सकूं हिम्मत है कहां ये, मैं साथ काम कर सकूं हिम्मत ये है कहां। लड़के ने कहा सारी मशक्कत मैं भरूंगा, जिस काम को फरमाएंगे वो काम करूंगा, जो कुछ कमा के लाएंगे अज़ फ़ज़ले किबरिया, इसमें से आधा मेरा होगा आधा आपका। इस बात पर बुजुर्ग रजामंद हो गए, खुश हो के दोनों शहर की जानिब को चल पड़े। एक शहर में पहुंचे तो बनाया वही मकाम, जो कुछ कहा बुजुर्ग ने उनसे किया वो काम। वो बेचता था शहर में सौदा खरीद कर, कुछ रोज ही में पैदा किया उसने माल उजर।
शहर में कारोबार करते हैं, जब थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो गया तो वो वो शान से रहने लगे, उसके बाद क्या होता है सुने।
हर काम करता पूछ के लड़का बुजुर्ग से, अखलाक से दोनों के सभी खुश आबाम थे। एक रोज लड़का शहर में जो घूमने गया, शाही महल के सामने से जब गुजर हुआ, दुख्तर ने बादशाह की जो देखा बाम से, एक आह भर के रह गई वो दिल को थाम के। सूरत को उसकी देख के उस पर फिदा हुई, बोली वो एक कमीज से दरबार जा अभी, कहना ये मेरे बाप से तू मेरा ये प्याम, शादी किसी बशर से करो मेरी नेक नाम। शादी ना होगी जान को कुर्बान करूंगी, हीरे की चाट के मैं कनी आज मरूंगी। जिस दम खबर ये मिल गई उस बादशाह को, फौरन दिया ये हुक्म सिपाही को देख लो, लड़का वो कौन है उसे जल्दी से लाओ तुम, करते हैं याद बादशाह जाकर बताओ तुम। फौरन सिपाही फिर गया, लड़का वो मिल गया, दरबार में जो आ गया तो शाह ने कहा, बेटे ये कहो कौन हो रहते हो तुम कहां। लड़के ने अपना हाल सभी कर दिया बयां, लड़के को बादशाह ने नरमी से दी सलाह, कर लो हमारी बेटी से मंजूर तुम निकाह।
लड़की जवां है और वो बेहद हसीन है,
लड़की जवां है और वो बेहद हसीन है, लड़की जवां है और वो बेहद हसीन है,
लड़की जवां है और वो बेहद हसीन है।
लिखी पढ़ी है ना
चाहता हूं कि मेरी बेटी के साथ तुम निकाह कर लो, शादी कर लो, मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, हसीन है, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। तो वो लड़का क्या कहता है बादशाह से समाज फरमाए।
बोलो तुम्हारी राय क्या है, क्या ख्याल है, अजरा है मेहर बेटे ये तुमसे सवाल है। लड़के ने बा अदब ये किया अर्ज हम शिताब, ये पूछ के बुजुर्ग से देंगे तुम्हें जवाब, उनके बगैर हुक्म के हम कुछ न कहेंगे, राजी अगर वो हो गए हम शादी करेंगे। बोला ये बादशाह के बेहतर ये बात है, जो बाप का महकूम है वो पास बात है, तुम जाके मशवरा करो अपने बुजुर्ग से, हमको दो जवाब अभी आके लौट के। लड़का ये सुन के अपनी दुकान पर चला गया, अपने बुजुर्ग से ये कहा सारा माजरा। बोले बुजुर्ग शौक से ये शादी कीजिए, फौरन ये बादशाह को पैगाम दीजिए, सर आंखों पे है आपका फरमान ये राजी हमारे मोहतरम क़िबला है बाशऊर। सुनकर ये बात बादशाह मसरूर हो गया, जो फिक्र उसके दिल पे था वो दूर हो गया।
दरबार को सजाया बड़े एहतमाम से।
लड़की का फिर निकाह किया धूम धाम से,
लड़की का फिर निकाह किया धूम धाम से,
लड़की का फिर निकाह किया धूम धाम से। अपनी बेटी का निकाह कर दिया और वो महल जिसमें वो लड़की थी वो भी लड़के को दे दिया। उस रात का माजरा सुनिए जो हर इंसान की रात में एक बार आती है, समाप्त कीजिएगा।
दुख्तर को बादशाह ने जिस महल में रखा, वो महल बादशाह ने लड़के को दे दिया। लड़के से कहा रात को इस महल में रहना, तकलीफ अब तुम नहीं सहना। लड़का गया दुकान पे जब शाम हो गई, बोला वो ये बुजुर्ग से अर्ज है एक मेरी, शाही महल में रात को सोने को जाऊंगा, जब होगी सहर आपकी खिदमत में आऊंगा। बोले बुजुर्ग रात को सोना दुकान पर, शाही महल में रात गुजारेंगे हम पिसर। जब रात को बुजुर्ग वो पहुंचे हैं महल में, मंजर बाहर आपरी देखे हैं महल में। बिस्तर पे है बैठी हुई वो शाह की दुख्तर, पढ़ने लगे नमाज मुसल्ला वो बिछा कर। जब रात गुजरी कुछ तो वहीं सो गई दुल्हन, वो और बुजुर्ग रब की इबादत में थे मगन। गुजरी जो आधी रात तो फिर देखते हैं क्या, सर से दुल्हन के नाग नमूदार एक हुआ।
जब आधी रात गुजरी तो वो बुजुर्ग क्या देखते हैं, तो उस लड़की के यानी दुल्हन के सर से एक काला नाग निकलता है। जब वो नाग उनकी तरफ झपटा तो उन्होंने क्या किया सुनिएगा।
गुजरी जो रात आधी तो फिर देखते हैं क्या, सर से दुल्हन के नाग नमूदार एक हुआ। लपका वो उन बुजुर्ग पे जहरीला अजदहा, तलवार के इशारे से दो टुकड़े कर दिया।
खुदा के शुक्र के सजदे अदा किए,
शब भर खुदा के शुक्र के सजदे अदा किए,
शब भर खुदा के शुक्र के सजदे अदा किए।
राज की बात थी, इसीलिए वो बुजुर्ग खुद गए, लड़के को नहीं भेजा। पहली रात जब वो बुजुर्ग गए तो आधी रात के वक्त उस लड़की के सर से नाग निकलता है, इनकी तरफ झपटा तो उन्होंने तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए। इसी तरह से कई दूल्हा मर चुके थे उस लड़की से। उसके बाद जब सुबह होती है तो बादशाह एक सिपाही को भेज कर कहता है कि जाओ देखो वो लड़का भी मर गया होगा, उसकी लाश उठा कर लाओ। लेकिन वहां जाकर सिपाही क्या देखते हैं, समाप्त कीजिए।
जब सुबह हो गई तो सिपाही को बुलाकर ये हुक्म बादशाह ने फरमाया कि जाकर लड़के की लाश महल से जा कर निकाल कर ले जाओ, उसको दफन करो शहर से बाहर। वो जानता था मर गया होगा वो नौजवान के इससे पहले मर चुके दूल्हा कई वहां। लड़की से उसकी शाम को जिस नौजवान के साथ होती थी शादी, जिंदा न रहता था एक रात। मिलती थी लाश उसकी सवेरे को महल में, मरता था दूल्हा जाने भला किस तुफैल में। इस बात का नाराज खुला बादशाह पर, मरता है दूल्हा किस लिए इस महल के अंदर। अल-मुख्तसर के पहुंचे सिपाही जो महल पर, देखा कि एक बुजुर्ग है कुरआन है रहल पर। करते हैं वो तिलावत कुरआन झूम कर, लड़के की लाश तो वहां आई नहीं नजर। ये देख कर सिपाही गए बादशाह के पास, बोले के बैठा है वहां एक बुढ़ा बेहरास। बोला ये बादशाह के बुढ़े की ये मजाल, बेटी के पास महल में आया है इसका काल।
चलो दरबार में ये महल छोड़ के, फौरन चलो दरबार में ये महल छोड़ के, फौरन चलो दरबार में ये महल छोड़ के।
राजा के बादशाह के सिपाही आते हैं और उन बुजुर्ग से कहते हैं कि ए बुढ़े चल, तुझे बादशाह ने बुलाया है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि बादशाह से कह देना मैं नहीं आऊंगा। वो सिपाही यही बात जाकर बादशाह से कहते हैं तो बादशाह क्या करता है सुनिएगा।
फिर जाके उन सिपाहियों ने बुढ़े से कहा फौरन चलो दरबार में है हुक्म शाह का। बोले बुजुर्ग बंदा नहीं उठ के जाएगा, है काम बादशाह को तो चल के आएगा। फौरन सिपाहियों ने दी ये शाह को खबर, ये सुन के बादशाह गया अपने महल। लड़का अगर यहाँ हो जाती उसकी मौत वो होता अदम रवा। लड़की के सर में सांप था वो काटता उसे, इस वास्ते न महल में आने दिया उसे। हम आए और रात भर नामे खुदा लिया, निकला जो सांप सर से तो दो टुकड़े कर दिया। देखो उठा के ढाल के नीचे है चीज क्या, देखा जो बादशाह ने तो काला नाग था।
खुश हो के बादशाह ने शुक्रे खुदा किया,
खुश हो के बादशाह ने शुक्रे खुदा किया, खुश हो के बादशाह ने शुक्रे खुदा किया,
खुश हो के बादशाह ने शुक्रे खुदा किया।
खैरात की गरीब को खुशहाल
सांप जो निकला रात को, अगर वो लड़का आता तो वो उसको काट लेता, इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा, खुद आया, मैंने उसको मार दिया है। ये बात सुनकर बादशाह खुश हो जाता है और गरीबों में खैरात करता है, खुशी का दिन है उसके लिए, और उसी दिन से उनका एहसान मंद हो गया बुजुर्ग का। फिर आगे क्या होता है समाप्त करें।
एहसान मंद हो गया वो उन बुजुर्ग का, लड़के से उन बुजुर्ग ने जाकर ये जाकर ये बादशाह से दरबार में कहो, हम घर को अपने जाएंगे रुखसत हमें करो। लड़के ने जाके शाह से दरबार में कहा, रुखसत दुल्हन को कीजिए मैं घर को जाऊंगा, अपने वतन को जाऊंगा मैं आज ही जरूर, कुछ रोज रह के आऊंगा वापस यहीं हुजूर। खुश हो के बादशाह ने रुखसत उसे किया, बेटी के साथ उसने खजाना बहुत दिया, शाही जहेज खिलात तो इनाम बेशुमार, देकर कहा के जाओ ये ले जाओ सौ सवार। सामान सब दुकान का बुढ़े ने बेच कर लड़के के साथ शहर से जारी किया सफर।
वो बुजुर्ग भी अपनी दुकान का सारा सामान बेचकर उसी लड़के के साथ सफर करने लगते हैं। कुछ रोज के बाद क्या होता है सुने।
कुछ रोज बाद पहुंचे हैं वो उस मकाम पर जारी, जहां से दोनों ने मिलके किया सफर। फौरन वहीं बुजुर्ग ने रुक कर किया कयाम, लड़के से ये कहा के करो एक इंतजाम, गाँव से जाके लाओ तो आरे कसों को तुम, जर्राह को भी साथ में अब लेके आओ तुम।
कसों को बुलाने जाता है तो वो बुजुर्ग इतने वक्त में जो माल दौलत था उसको आधा आधा बराबर बांट के रखते हैं। जब लड़का वापस आता है तो ये बुजुर्ग उस लड़के से क्या कहते हैं समाप्त फरमाइएगा, बड़ी दिलचस्प बात।
सामान पैसा मालो जर जो कुछ भी साथ था वो ठीक ठाक तोल के सब आधा कर दिया,
हारे कसों को और एक जर्रा को लेकर लड़का पलट के आ गया अपने मकाम पर। बोले बुजुर्ग माल को तकसीम कर लिया, जो चाहे हिस्सा ले लो इस मालो मता का। अब रह गई दुल्हन उसे बांटेंगे चीर के, मसरूर होंगे फजल से रब्बे कदीर के। बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने माल को आधा आधा बांट लिया है, अब ये जो दुल्हन बची मेरा तुम्हारा ये वादा था, पहले सोच लो कि जो भी चीज होगी आधी आधी बांटेंगे, इसलिए दुल्हन को भी आधा आधा बांट लो। लड़का ये सुनकर उन बुजुर्ग से क्या कहता है,
ये सुन के लड़का पड़ गया हैरत में और कहा, ऐसा ना आप कीजिए अज़राह की बुरिया, ये सारा माल आप ही ले ले जनाबे मन, हिस्से में मेरे छोड़ दे बस आप ये दुल्हन, ऐसा नहीं मंजूर तो सब आप लीजिए, हजरत दुल्हन को चीर के आधा न कीजिए। बोले बुजुर्ग पहले तुम्ही ने तो तय किया, जो कुछ भी साथ लाएंगे वो आधा आपका, नियत खराब मत करो लड़की को बांट लो, हर माल में से आधा हिस्सा अपना छांट लो। मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं होगा ना ये कभी, हक दूसरे का जर्रा भर लूंगा ना मैं कभी। ये सुन के लड़का हो गया खामोश उस घड़ी, बोले बुजुर्ग लड़की से हो जाओ तुम खड़ी।
बुजुर्ग कहते हैं दुल्हन से कि खड़ी हो जा। लड़की बेचारी खड़ी हो जाती है। फिर आरे वालों को जो बुलाया था उस लड़की को आधा आधा करने के लिए, जिससे लकड़ी चीरी जाती है वही आरा होता है, आरे कसों ने उसको चीरने के लिए सर के ऊपर आरा रख दिया, तो क्या होता है सुनिएगा, क्या चीज उस लड़की के सर में से निकलती है आरा रखते ही, सुने।
आरे कसों से ये कहा तुम इसको चीर दो, उजरत मिलेगी तुमको जरा फिक्र मत करो, सर पे दुल्हन के आरे का जब दांत इक लगा, लड़का गिरा कश खा के और बेहोश हो गया। आरा चला तो क्या हुआ हैरत की बात थी, सर से दुल्हन के काली एक नागिन निकल पड़ी।
फौरन उसे बुजुर्ग ने दो टुकड़े कर दिया,
फौरन उसे बुजुर्ग ने दो टुकड़े कर दिया, फौरन उसे बुजुर्ग ने दो टुकड़े कर दिया,
फौरन उसे बुजुर्ग ने दो टुकड़े कर दिया।
आरे कसों को रोक के मरहम
की जोड़ीदार, जिस नाग को शादी की पहली रात उन बुजुर्ग ने जाकर वहां मारा था महल में, उस नागिन को भी आप मार सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है सुने,
दुल्हन को और लड़के को फिर होश में किया, जो माल दो जगह था वो सब एक कर दिया, लड़के को और लड़की को जी भर के दी दुआ, खुशहाल और शादुमा रखे तुम्हें। लड़का ये देख कर बड़ी हैरत में पड़ गया, बोले बुजुर्ग लड़के से कि इसमें मालो जर है तेरा हमें कुछ न चाहिए, ममनून है एहसान से फर्जंद हम तेरे। लड़के ने कहा मेरा क्या एहसान है हुजूर, आगाह उस एहसान से फरमाइए जरूर। हैं कौन आप हाल तो इरशाद कीजिए, बोले बुजुर्ग बेटे जरा याद कीजिए। बुजुर्ग कहते हैं कि हम कौन हैं, याद कर, हम वही हैं, हमारा जनाजा 3 दिन से रखा हुआ था, हमारे ऊपर 50 रुपए कर्ज के आ रहे थे एक साहूकार के, कोई अदा नहीं कर रहा था, तूने जो वो 50 रुपए अदा किए थे, हम वही हैं और तेरे साथ साए की तरह मौजूद हैं हर वक्त। आगे क्या होता है सुने। बेशक ये मुझ पे है तेरा एहसान बहुत बड़ा, फजले खुदा से तू रहेगा शादमा सदा। ले जा दुल्हन को ये है खजाना भी सब तेरा, पाएगा तख्त शाही भी अज फजले की बुरिया। फरमाया उसने तेरे लिए खूब शाद काम, फरमाया उसने तेरे लिए खूब शाद काम, फरमाया उसने तेरे लिए खूब शाद काम। बात बिल्कुल साफ हो गई तो वो लड़का कहता है कि बुजुर्गवार मुझे ये और बता दीजिए कि जब मैं घर से आ रहा था तो मुझको रास्ते में जब प्यास लगी तो मैंने एक कुआं देखा, जब मैंने उस कुएं में झांका तो उसमें 3 कुएं थे, 2 का पानी एक दूसरे में जा रहा था और एक अलग, इसका मतलब क्या हुआ। तो बुजुर्ग क्या कहते हैं समाप्त कीजिएगा। बोले बुजुर्ग एक जमाना वो आएगा के 3 भाई होंगे मगर उनमें एक जुदा, आपस में मालदारों में होगा खला मला, लेकिन गरीब का ना करेगा कोई भला। आपस में लेन देन करेंगे वो 2 गनी, लेकिन ना बात पूछेगा कोई गरीब की। तो लड़का कहता है कि एक बात सिर्फ और बता दीजिए कि मुझे वहां पर 2 घड़े रखे हुए मिले पानी के, ऊपर से तो भीगे हुए थे लेकिन अंदर जब मैंने देखा तो उनमें पानी नहीं था, इसका मतलब क्या होता है। तो बुजुर्ग ने क्या कहा। बोले बुजुर्ग बेटे सुनो इसका राज भी, होंगे फकीर ऐसे ही मौलवी, बाहर से तो आएंगे नजर नेक पारसा, लेकिन न होगा कल्ब में एहसास इत्तका। अमल में कोरे उसी दौर के बशर, होंगे अमल में कोरे उसी दौर के बशर, होंगे अमल में कोरे उसी दौर के बशर।
इतनी बात कहकर वो बुजुर्ग तो वहाँ से चले जाते हैं, रूपोश हो जाते हैं। सारा उसका लड़के का राज जो था वो सारा बता देते हैं उसको कि यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, इसका मतलब ये होता है, उसका ये होता है। वो उन बुजुर्ग की रूह ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। आखिरी बंद समाप्त फरमाइएगा, इस लड़के ने खुदा पर भरोसा किया है, इसका अंजाम क्या मिला इसको?
ये कह के वो बुजुर्ग तो रूपोश हो गए, लड़का वो सब सवार ताजुब में थे खड़े। लड़का वो सारा माल उठाकर खुशी खुशी अपने वतन को चल दिया, बीवी भी साथ थी। खिदमत में जाके माँ को दिया सारा मालो जर, माँ शाद शाद हो गई दोनों को देख कर। एक चांद सी दुल्हन मिली और माल बेशुमार, खैरात की तो हो गया दौलत से माला माल। कुछ रोज बाद आई उसे शाह की खबर, तुम आके संभालो ये हुकूमत मेरे पिसर। अल्लाह पे भरोसा किया उसका फल मिला, के बादशाह हो गया मुल्क अजीम का। दोनों जहां में मिलता है खैरात का सिला, 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 दोनों जहां में मिलता है खैरात का सिला।